जय जय श्री राधे। इतनी छोटी माला क्यों ले कहते हैं? हरि बोल आदिश्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस दिव्य स्थान पर। काल के प्रभाव से सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ बदलने के बाद क्या बचता है? यस, यादें बचती है, स्मृति बचती है। जो बदला हुआ है, जो पहले था उसकी याद रहती है और सब कुछ बदल जाता है। ये स्थान जो है, अभी इसमें 4 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, लेकिन यहाँ पर एक झोपड़ी थी केवल, और झोपड़ी में एक पेड़ था बड़ा टेढ़ा सा। वहाँ पर जो माताएं बैठी है ना, वहीं तक था झोपड़ी, और यहाँ पर रोज शाम का सत्संग होता था परम पूज्य रमेश बाबा जी महाराज का। एक सीधे तख्त पे बैठकर, एक पुराना विसापीटा बाजा लेकर बहुत धुआंधार भजन करते थे, कीर्तन करते थे। तो जब हम सबसे पहले 1986 में दिसंबर के कड़ाके की ठंड में यहाँ पर वृंदावन यात्रा में आए थे, और सारी वृंदावन यात्रा करने के पश्चात आखिरी हमारा मुकाम था ये पड़ाव, जिसमें हम लोग यहाँ पर आए थे, जहाँ पर हम लोग प्रसाद लेने वाले हैं रस मंदिर। हमारा हमने पहले 4 बजे उस दिन का पहला प्रसाद लिया। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा पहले यात्रा कैसे हुआ करती थी, अभी तो इतना लग्जूरियस यात्रा है। हाँ, बढ़िया कमरा, बढ़िया प्रसाद, टाइम पे आपको भूख लगने के पहले प्रसाद तैयार रहता है। हमारी यात्राएं जो है वो 4:30 बजे मंगला आरती में शुरू होती थी, कंपलसरी। आप मिस नहीं कर सकते, अगर आप मिस किए तो वहाँ से 5 बजे आउट चले गए लोग, टेम्पो से जाते थे। और फिर पूछना नहीं है ब्रेकफास्ट किधर है, लंच किधर है, कुछ नहीं पूछना है, किसी का इंतज़ाम नहीं होता था। नो प्लानिंग, नो ऑर्गेनाइजेशन, राम भरोसे यात्रा होती थी। हम लोग माधुकरी करते थे, ब्रजवासियों के झोपड़ी में जाकर भिक्षा करते थे, वो जो रोटी सब्जी जो भी देखें छाछ देंगे वो खाते थे। कई बार हमने वृक्षों के नीचे महाराज जी के साथ गोलाकार में बैठकर, मालाकार महाराज ने हमको वो रोटियाँ वितरित की हैं जो हम लेके आते थे, उनको देते थे, फिर सबको वितरित करते थे, फिर गोल बैठकर हम लोग खाते थे। कभी अचार, कभी चटनी, कभी सब्जी मिलेगी तो कभी रोटी, और भरपेट छाछ। कभी भी किसी भी ब्रजवासी के घर में जाओ, छाछ आपको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, बहुत इतने इतने बड़े हंडे रहते थे, कभी भी जाओ। तो उस दिन हमें कुछ भी नहीं मिला था जिस दिन हम लोग यहाँ पर आए थे। 4 बजे रस मंदिर पहुँचे, तो सब लोग अपना दिन का भोजन भोजन करके विश्राम कर रहे थे। हम लोग 25 लोगों की मंडली जो है वो घुस गई और सब लोग युवा अवस्था में थे, टू मच यंग एंड टू मच हंग्री। तो झट से रसोई में गए और उन्होंने फटाफट रोटी बनाना शुरू कर दिया। सब्जी तो थी नहीं, दोपहर की खत्म समाप्त हो गई थी, इतने अचार के डब्बे सब उतारे और एक रोटी आती थी दो मिनट में समाप्त हो जाती थी। ऐसे बहुत देर तक चलता रहा सिलसिला और वो प्राकर फिर हम लोग वहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करके इस जगह पे आए। तो महाराज जी ने कहा कि यहाँ पर रमेश बाबा रहते हैं और वो कीर्तन करते हैं, जाओ दरवाज़ा खटखटाओ। तो मैं जाके दरवाज़ा खटखटाया तो बाबा महाराज बाहर आ गए। तो महाराज ने फिर कहा कि उनको बताओ कि आप गाओ। तो हम फिर गए, उनको बोला कि आप गाने की विनती कर रहे हैं। तो एक पुराना सा बाजा लेके आए, एक तख्त पे बैठ गए खिड़की के पास, हम सब लोग बैठ गए और जो कीर्तन किया, दो कीर्तन किए उन्होंने, हाँ, भजले राधे जय श्री राधे और कृष्ण प्रिया श्यामा लाडली राधा। वो भजन जब उन्होंने गाया ना, वो जैसे होता ना हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है पता है आपको, वैसा रनवे नहीं होता है उसका, ऐसा ऐसा ही उड़ता है आकाश में। सब लोग, हम लोग ऐसे दिव्य आकाश में गए। हम सब लोग उस समय ये भूल गए कि हम शरीर हैं। हमने सुना बहुत है ना, वी आर नॉट दिस बॉडी, लेकिन उस समय पहली बार अनुभव हुआ कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। ये जो अनुभूति होती है ना, वो संतों की कृपा से होती है। आप कितना भी सुनेंगे, कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी बोलेंगे, प्रवचन करेंगे, लेकिन ये जो अनुभूति है कि आप शरीर नहीं हो, ये संत ही करा सकते हैं। ये दो भजन में उन्होंने ऐसे तार छेड़े हृदय के जो अभी भी ध्वनि दे रहे हैं, वो तार जो छिड़े हुए हैं। मुझे अभी भी याद है वो कि मैं एकदम पागल जैसा हो गया था उस समय। बहुत सुंदर अनुभूति थी वो, तो वो इसी जगह पर हुई, यही जगह है वो। कम से कम एक घंटा जो है हम इस विश्व में नहीं थे, किसी और विश्व में थे, पुकार रहे थे। इसलिए मैं सदैव आपको बताता हूँ कि जब भी भगवान नाम का कीर्तन होता है, सब बटन बंद कर दो और केवल पुकारो, जस्ट कॉल। क्योंकि पता नहीं है आपको कभी दोबारा ये पुकारने का मौका मिलेगा। इसलिए धाम में बैठे हुए हो और पुकारने का मौका है, बिल्कुल पुकारो, हृदय से पुकारो, अपने आप को खोकर पुकारो, न्योछावर करके पुकारो, समर्पित होकर पुकारो, हृदय से पुकारो। क्योंकि यहाँ पर हृदय की पुकारी सुनी जाती है, म्यूजिकल बैंड की सुनाई नहीं होती है, यहाँ पर हृदय की आवाज़ सुनाई देती है। सुनाई सुनते हैं ठाकुर राधा रानी और ठाकुर जी। तो ऐसे बहुत अद्भुत अनुभव है यहाँ के। ये जो स्थान है, चलो शुरुआत हम लोग थोड़ा दूर से करते हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा, कृष्ण के द्वारा निर्मित जो जगत है, पूरा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड, ये केवल भौतिक हिस्सा है, उसके परे स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक विश्व है। वो कहते हैं कि 3/4 है, 3/4, और ये जो है वो 1/4 है। इसमें उसमें अंतर क्या है कि इसमें जन्म मृत्यु है, उसमें जन्म मृत्यु नहीं है। यहाँ पर कम लोग रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, कई गुना अधिक। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड हमारा है। हम केवल एक अणु मात्र भी नहीं है, हमारा पूरा ब्रह्मांड। जैसे अगर सरसों के बोरी में 100 किलो सरसों डाला जाए, दाने, तो कौन से दाने का महत्व ज़्यादा होता है? एवरीबडी सेम, एक एक दाना सरसों का क्या उसकी वैल्यू है? 100 ग्राम गिर भी गया, 5,000 सरसों के दाने गिर गए, तो हु केयर्स। वैसे हमारी स्थिति है। तो एक ब्रह्मांड लीजिए जिसमें हम हैं, इसमें 14 लोक है, 7 स्वर्गलोक हैं, 1 पृथ्वीलोक है और 7, 6 नीचे के लोक हैं। उसके नीचे और 27 नरक लोक हैं, उसके बीच में पृथ्वी लोक है, उसमें हम लोग एक पृथ्वी लोक है पूरा, बहुत सारे देश है उसके अंदर, उसके अंदर एक भारतवर्ष है, उसके अंदर हम रहते हैं। लेकिन भारतवर्ष बहुत विशाल है, पूरे भारतवर्ष में भगवान को मथुरा मंडल बहुत प्रिय है, क्योंकि वहाँ वो स्वयं अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, लीला करते हैं मथुरा मंडल। कल हमने तो उसका बहुत महात्म्य सुना। ये जो मथुरा मंडल है, इसको कभी हाथ से भी स्पर्श किया करो भूमि को, क्योंकि ये बहुत पावन भूमि है, यहाँ पर भगवान के चरण कमल लगे। जब भगवान का जन्म हुआ तो पृथ्वी माता भूदेवी, भगवान की एक पत्नी है वो, ऐश्वर्य संपन्न पत्नी, वो भूदेवी बहुत प्रफुल्लित हो गई थी कि अब मेरे वक्ष स्थल पर भगवान के चरण कमलों का अलंकार होगा, मेरा वक्ष स्थल जो है वो भगवान के और राधा रानी के और भक्तों के चरण कमलों से सुशोभित होगा। इससे वो बहुत आह्लादित हो गई थी। फिर सारे गोपियों ने, ग्वाल बालों ने, गैयाओं ने, बैलों ने, भैंसों ने, भैंसाओं ने, जितने भी जानवर, सब लोग ने मीटिंग की थी कि ये जो भगवान के चरण चिन्ह है इसको हम लोग कभी भी लांगेंगे नहीं, उसको कभी मिटाएंगे नहीं, ये बना रहेगा, यही भगवान, यही ब्रज भूमि का एक गौरव और एक अलंकार होगा। तो वो भारतवर्ष में जो भगवान को अति प्रिय है, पृथ्वी लोक भगवान को अति प्रिय है, क्योंकि पृथ्वी लोक से ही गौलोक धाम जाने का रास्ता निकलता है, स्वर्ग लोक से भगवान के धाम जाने का रास्ता नहीं है। कभी वहाँ पहुँचोगे तो बहुत लंबे समय तक फंस जाओगे, बहुत लाखों साल तक वहाँ पर आपको शेड्यूल्ड काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक ये मन में कामना रखना कि हमें स्वर्ग में नहीं जाना है। जब हमारे भक्तिपूर्ण कार्य, ध्यान से सुनिए, जब हमारे भक्तिपूर्ण कार्य किसी हेतु के साथ हम करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप हम स्वर्ग में पहुंचते हैं। जब कर रहे हैं तो सोच रहे हैं कि पुत्र हो जाए, जब कर रहे हैं सोच रहे हैं धन मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, ये मिलेगा वो मिलेगा, कुछ भगवान का नाम जब कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं तो मिलेगा, बरसाना जाके सेवा करूंगा तो अच्छा होगा, कुछ लाभ होगा। तो लाभ हेतु जब हम भक्तिपूर्ण कार्य करते हैं तो भक्तिपूर्ण कार्य कर्मकांड में रूपांतरित हो जाता है, और कर्मकांड का अच्छे काम करें ना, अच्छे काम का फल जो है वो स्वर्गवास है, स्वर्ग में निवास। इसलिए जब तक हमारे हृदय से निरपेक्ष भक्ति की भावना उत्पन्न नहीं होती है तब तक गौलोक में प्रवेश नहीं मिलता है। बीच में बहुत स्टॉप्स हैं, है ना, किसी स्टॉप में वड़ा पाव मिलता है, किसी समोसा मिलता है, किसी में पाव भाजी मिलती है, तो हम लोग वहाँ रुक गए तो वहीं फंस गए, अगर वहाँ आकर्षित हो गए तो वहीं फंस गए। लेकिन जिसके मन में यहीं से लक्ष्य फिक्स है कि हमको भगवत धाम में जाना है, किधर भी यहाँ वहाँ भटकना नहीं है, वही लोग बड़े मुश्किल से गौलोक पहुँच सकते हैं। फिर भी रास्ता जो है वो इधर ही है, पृथ्वी से ही है। इसलिए पृथ्वी में भगवान के सारे अवतार जो है वो प्रकट हुए हैं, सारे अवतारों के चरण, यानी चरण यहाँ पर पड़े हैं। उस पृथ्वी में भगवान का प्रिय स्थान है मथुरा मंडल, वृंदावन धाम, ब्रजभूमि। ब्रजभूमि की व्याख्या वो है जहाँ पर गाय गौ वंश जो है वो निर्भय होकर विहार करते हैं, उसको ब्रजभूमि कहते हैं। एक ज़माने में पूरा भारतवर्ष ब्रजभूमि थी, क्योंकि कहीं भी गायों को संकट नहीं था। अभी ब्रज में भी वो निर्भयता से घूम नहीं सकती, ब्रज में भी भैंसे आ गई ज़्यादा, उस समय भैंसे थी लेकिन प्रधान गायों का प्राधान्य था उसमें। तो उस पृथ्वी पर भगवान को मथुरा मंडल बहुत प्रिय है। मथुरा मंडल में भगवान को 137 वन बहुत प्रिय हैं, 137 में से 108 वन बहुत प्रिय हैं, और 108 में से 12 वन बहुत प्रिय हैं, और 12 में से एक वन सबसे ज़्यादा प्रिय है, वो कौन सा है? श्री वृंदावन धाम। एक है वृंदावन धाम, यानी पूरी व्यवस्था 84 कोस, 168 स्क्वायर किलोमीटर्स, पूरा ब्रज मंडल है, इसमें इसका नाम भी वृंदावन धाम है, लेकिन उसमें भी एक वृंदावन है, 12 वनों में से एक वन, 7 वन जमुना जी के उस तरफ है, 5 वन उसकी तरफ है, दोनों तरफ। तो उसमें भी सबसे प्रिय जो है वो वृंदावन है। और अभी हम कह रहे हैं बरसाने में बैठे, वृंदावन से 50 किलोमीटर दूर है, ये अलग है वो अलग है, लेकिन पौराणिक दृष्टि से वृंदावन 20 कोस का है, 20 क्रोश, 84 कोस में 20 कोस का केवल वृंदावन है। और उस वृंदावन में, आज का वृंदावन जो हम लोग, हमारा मंदिर है, इस्कॉन का मंदिर है ना, वो जो ज्योग्राफिकल वृंदावन है, 281121 उसका पिन कोड है, उसको रमन रीति कहते हैं, वो भी है उसके अंदर, उसके अंदर छटिकरा है, उसके अंदर छाता है, उसके अंदर गोवर्धन है, उसके अंदर यमुना है, उसके अंदर नंदगांव है, उसके अंदर बरसाना है, जावट है, कोकिलावन है, सब कुछ वृंदावन में है। ये समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अभी भी वृंदावन में ही है, क्योंकि बरसाना वृंदावन में इंक्लूड है, सम्मिलित है। और इस पूरे वृंदावन में भी कई प्रकार के अलग अलग व्यवस्था है। जैसे वृंदावन में कालिया था, भगवान ने जाकर सबको दर्पण दमन किया, अगासुर आया उसका वध किया, और बहुत सारी चीज़ें वृंदावन में हुई है। ब्रह्मा ने बछड़े चुराए तो एक जगह पर स्तुति की है, एक जगह पर चुराया है बाल हरा, एक जगह पर परखम परीक्षा की है, एक जगह पर चौमुहा स्तुति की है, एक जगह पर सही सही, यानी यही है भगवान, यही है, समझ गए वो। तो चार जगह पर लीला हुई है, एक जगह पर अकासुर को मारा है, पांचवी जगह हो गई। तो ये सब कुछ वृंदावन में होता है, गौचारण भी होता है, राक्षस भी आते हैं, उनका वध भी होता है। लेकिन बरसाना जो है वो वृंदावन का हार्ट है, हृदय है, वो केंद्र स्थान है। सभी वृंदावन में, पूरे ब्रजमंडल में प्रेम लीलाएं होती है, कोई ऐश्वर्य लीला नहीं होती है। जो भी है ऐश्वर्य होता है उसके अंदर, जैसे गोवर्धन में भगवान ने उठाया तो उठाने का ऐश्वर्य तो है ना, बल तो है उसके अंदर, दिखाई दे रहा है। हरे कृष्णा, जागृत रहना बहुत जरूरी है, भगवान की कथा चल रही है। अगर मुमकिन हो तो पीछे की लाइट लगा देना, अंधेरे का वातावरण नींद के लिए पोषक होता है। तो कोई उत्साही व्यक्ति जाओ और पीछे की लाइट लगाओ। हरे कृष्णा, बताओ मैं क्या कह रहा था। तो सारे वृंदावन में राक्षसों का दमन भी किया गया है, वध भी किया है, लेकिन बरसाना ऐसा स्थान है जहाँ पर कृष्ण स्वयं जो है वो रज लेने के लिए आते हैं। और बरसाने में किसी भी राक्षस का प्रवेश नहीं है। एक बार हाउ बिलाव आए थे नंदगांव में, और नंदगांव में हाउ बिलाव आए थे तो पत्थर बन गए शांडिल्य मुनि के शाप से, उसके बाद कोई नहीं आया। और कंस ढूंढे ढूंढे आया कृष्ण बलराम जी को, और कन्या बन गया, 6 महीने रहा, 6 महीने कंडेली पे गौशाला साफ की, बहुत सारा काम किया, रोते रोते सब गोपियाँ हंसते हंसते वही काम कर रही हैं, और कंसनी गोपी रोते रोते वही काम कर रही है जो वो कर रहे हैं। भाग्य तो प्राप्त हुआ है लेकिन भावना उल्टी है, इसलिए रो रहा है। सारी गोपियाँ गीत गाते हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो कंसनी गोपी कर रही है। कंसनी गोपी क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो गोपी बनी हुई है, इसलिए कंसनी गोपी, इसलिए यहाँ पर कोई राक्षस नहीं आया। क्या कारण था राक्षस यहाँ पर नहीं लाने का? क्योंकि प्रेम के अंदर भी बहुत लेवल होते हैं, स्तर होते हैं। कुछ जगह पर राक्षस आ सकते हैं, उनका वध हो सकता है, किसी का वध हो रहा है तो मूड कैसा रहेगा, ऐसे एकदम सनसनी खेज, ऐसा कश्मकश, एंग्जाइटी बहुत सारा होता है। कोई किसी का युद्ध चल रहा है तो आप लोग ऐसा करो भाई, ऐसा नहीं होता है ना, युद्ध होता है तो आप ऐसा ठक 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 ठक, तो वो सब दूर होता है। यहाँ पर प्रेम की पराकाष्ठा होती है, यहाँ पर जो प्रेम की लीलाएं होती है ना, उसका उसकी तुलना किसी भी प्रेम की अन्य लीलाओं से नहीं कर सकते हैं। ये ऐसी उत्कट प्रेम लीलाएं हैं जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आ सकती है, राक्षस तो नहीं आ ही नहीं सकते। तो वो स्थान है बरसाना, अनेक प्रकार से विशेष है ये बरसाना, क्योंकि यहाँ पर राधा रानी निवास करती है, राधा रानी यहाँ पर विहार करती है। रासलीला ब्रज के चप्पे चप्पे पर होती है, हर कण पे हुई है। यहाँ पर भी आप देखा ना जाके, इधर भी गुप्त रासस्थली है। गुप्त रासस्थली क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राधा कृष्ण अकेले ही नाचते हैं। निवृत्त निकुंज कहते हैं उसको, निवृत्त निकुंज। यहाँ पर किसी को प्रवेश नहीं है, केवल जुगल जोड़ी जाती है बस। तो यहाँ पर अनेक विशेषताएं, क्योंकि राधा रानी विहार करती है, राधा रानी निवास करती है, और सब सखियाँ यहाँ निवास करती है, और कृष्ण यहाँ पर अपना पुरुष स्वरूप छोड़कर स्त्री शरीर धारण करके सखी वेश धारण करके आते हैं। आसान नहीं है किसी पुरुष को स्त्री बनना। तो अपना स्वत्व, अपना स्व अस्तित्व, उसको त्याग करके श्री कृष्ण यहाँ पर आते हैं राधा रानी की कृपा याचना करने के लिए। और विशेष बात यह है कि ब्रह्मा जी यहां पर पत्थर बन के बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी ना हमारे संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, हमारे ही नहीं सभी संप्रदाय के प्रमुख वही हैं, और लास्ट स्टॉप उनका ही है, उसके बाद कृष्ण है। इतने ऊंचे, देखो आपने कभी पढ़ा होगा ना, राक्षस ने शिव जी के साथ युद्ध किया, विष्णु के साथ युद्ध किया, कृष्ण के साथ किया, कार्तिकेय के साथ किया, गणेश के किया, इसके किया, उसे किया, किसी ने ब्रह्मा से युद्ध किया क्या? सब लोग केवल उनको पूछते हैं, बस प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं ब्रह्मा के साथ युद्ध करने की। इतने बड़े व्यक्ति, इतने बड़े नंबर वन सिटीजन ऑफ द ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के प्रथम नागरिक है वो, और वो यहां पर पत्थर बने हुए हैं। पत्थर बनने का अर्थ होता है मिस्टर नोबडी, यानी पत्थर पर। आपने भी जब पहाड़ पर चलते हैं कभी तो विचार करते हैं, अरे बेचारा पहाड़ मेरे पैरों के नीचे, मैं उस पर चल रहा हूँ, कितना अपराध कर रहा हूँ, सोचते हैं कभी क्या हम लोग? पत्थर पर हम लोग कुछ भी करते हैं, बताने की जरूरत नहीं क्या क्या करते हैं। जानवर लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। पत्थर का कोई अपना पर्सनैलिटी नहीं होता है, पत्थर निर्जीव होता है। ये निर्जीव पत्थर नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी हैं। क्यों पत्थर बने हैं? राधा और कृष्ण और उनकी सखा सखियों के चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी यहाँ चिरंतन समय के लिए पत्थर बने हुए हैं। लिमिटेड समय नहीं था, 125 साल का या 12 साल का, 125 साल कृष्ण का पूरा जीवन काल है। 12 साल वो यहाँ पर रहे, 11 साल 55 दिन। तो केवल उस समय के लिए मैं आऊँगा, पत्थर बनूंगा, आप जाएंगे तो मैं भी जाऊँगा, ऐसा नहीं है, यहीं पर है। क्यों यहीं पर अभी अभी है? वो तो लीला चक्र चले गए, क्योंकि यहाँ पर भगवान नित्य लीला करते हैं। ध्यान से सुनना, 3 प्रकार की लीला होती है दर्शन ब्रज में। एक जो अभी दिखाई पड़ रहा है आपको, अच्छा तालाब है, सब बहुत सुंदर, वो आपके नज़रों से दिखाई पड़ रहा है, ब्रज भूमि है वो, आप दर्शन कर रहे हैं उसका, है ना, मंदिरों में जा रहे हैं, वन में जा रहे हैं, लीला सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं। फिर भगवान नैमित्तिक लीला करते हैं। नैमित्तिक लीला का अर्थ यह है कि वो कुछ किस समय फिक्स समय पर आते हैं, जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बाल लीला करते हैं, युवा लीला करते हैं, किशोर लीला करते हैं, और राक्षसों का वध करते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, उसको कहते हैं प्रकट लीला। उसको नैमित्तिक भी कहते हैं, निमित्त बनाकर आते हैं कि भाई रावण के लिए लोगों ने प्रार्थना की है, चलो रावण को मारने के लिए आता हूँ राम बनकर। फिर प्रार्थना की है, अरे कंस का अत्याचार हुआ, चलो उसको मारने के लिए कृष्ण बन के आता हूँ। अरे वो हिरण्याक्ष बहुत आतंक मचा रहा है, चलो मैं वराहदेव बन के आता हूँ। वो नैमित्तिक लीला है, वो कुछ समय के लिए होती है, प्रयोजन उसका कुछ, वो शुरू होती है और समाप्त भी होती है, और उसके परे नित्य लीला होती है। वो नैमित्तिक वाले भगवान आते हैं और जाते भी हैं, लेकिन अपने सूक्ष्म रूप में यहाँ पर नित्य लीला भगवान करते रहते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी अभी भी विराजमान हैं और साथ साथ लीलाओं का दर्शन भी कर रहे हैं, और हमारे आप जैसे लोगों का भी चरणों का धूल वहाँ पर सर पे ले रहे हैं। इसलिए जब आप मंगलार जाते हो, बहुत गिड़गिड़ा के प्रार्थना करना, सॉरी 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 सॉरी, क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना, हम कोई भी इंद्रिय भोग करने के लिए ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम केवल श्री जी का दर्शन करने के लिए ऊपर जा रहे हैं, से हमारे पापी पैर आप पर चढ़ पे चले जाएंगे, ये भाव होना चाहिए। वहाँ पर जाकर देखना नहीं चाहिए क्या लस्सी मिल रही है, क्या पकौड़े मिल रहे हैं, दर्शन एवं मात्र, और कुछ नहीं करना है। या सत्संग करना है या कीर्तन करना है, भक्तों का संग करना है। क्योंकि आपको समझ में आएगा ना कि ये बात जो है ये बहुत दिव्य स्थली है। श्री राधे, इनको कुर्सी दीजिए बैठने के लिए। जय हो श्री राधे, जय हो, जय हो।
ये कुंज है सरकार की विशेष।
जय हो,
जय
हो। थैंक यू, धन्यवाद। उनको बैठने का इंतजाम कीजिए। श्री राधे श्याम। बसायची व्यवस्था करा, लवकर धावा ना जरा, काय हळूहळू काय करताय? एवरीबडी इज लुकिंग हु विल डू इट, समबडी विल डू इट। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा साइड में। हरे कृष्णा। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पर है, इसलिए ये भी विशेषता है। ब्रह्मा जी के चार सर हैं, इसलिए यहाँ पर भी चार शिखर हैं पर्वतों के, है ना? ब्रह्मा जी के, हमारे ब्रह्मा जी के चार शीश हैं, और ब्रह्मांडों में ज़्यादा भी हैं, हजारों लाखों करोड़ों भी हैं। ब्रह्मा जी के कंधे पर बहुत सारे सर हैं, हमारे ब्रह्मांड में चार सर हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर आकर बैठे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पर चार शिखर हैं। पहला शिखर है मानुगढ़, दूसरा शिखर है दानगढ़, तीसरा शिखर है विलासगढ़, और चौथा शिखर के नीचे हम बैठे हैं मानगढ़। उसमें और एक चोटी है मोरकुटी की। तो वो ब्रह्मा जी का जो चार पर्वत के रूप में यहाँ पर सर यहाँ पर विराजमान है, ये ब्रह्मा जी की नाभि है जिसमें आप बैठे हो। क्योंकि कभी कभी हम ऐसे ही आते हैं, बस से आ गए, बैठ गए, इधर उधर अच्छा लगा, बहुत अच्छा सीन है, लेकिन जो महिमा है वो गुप्त होती है। ये ब्रह्मा जी की नाभि है जिसमें वो गहवर कुंड है, उसको राधा सरोवर भी कह सकते हैं, गहवर कुंड कह, कृष्ण कुंड भी कहते हैं, लेकिन गहवर कुंड हम बताते हैं। और ये जगह जो है इसमें हम बैठे हुए हैं, राधा रानी के मंदिर से लेकर आगे आएंगे तो बरसाना धाम में है। बरसाना एक क्या कहते हैं नगर है छोटा सा, और बरसाना के नगर के चारों ओर आठ गांव हैं राधा रानी के सखियों के, कमल की पंखुड़ियाँ जैसे हैं। बीच का जो हेमपीठ है वो बरसाना है, और हेमपीठ के आसपास पहली जो आठ पंखुड़ियाँ हैं वो आठ गांव हैं। तो आप इस तरफ आएंगे तो पहले बरसाना जो हेमपीठ है वो समाप्त होता है और चिकसोली गाँव शुरू होता है। चिकसोली, चिकित्सपुर, चित्रा सखी का गांव है ये, बरसाना राधा रानी का गांव है, ये चित्रा सखी का गांव है। इसके आगे ऐसे जाते रहेंगे तो चिकसोली समाप्त हो जाएगा और डभारा गांव शुरू हो जाएगा, जो तुंग विद्या का गांव है। तुंग विद्या ना, तुंग विद्या,
डभारा गांव तुंग विद्या।
हाँ कोई बात नहीं, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। सो बरसाना पूरा और चिकसोली गांव पूरा, ये दोनों मिलकर एक वन बनता है जो है गहवर वन, और गहवर वन भी बरसाने का हृदय है। बरसाने बहुत उत्कट है, बरसाना उसके अंदर भी अति उत्कट जो है वो गहवर वन है, उसके अंदर बहुत सुंदर अंदर उत्कट लीला होती है। अधिकतर गहवर वन में राधा कृष्ण अकेले रहते हैं या कुछ गिनी चुनी गोपियाँ रहती हैं, बाकी ब्रज में जब रास लीला होती है तो सारी करोड़ों गोपियाँ साथ में चलती हैं उनकी, लेकिन ये स्थान ऐसा है कि यहाँ पर गुप्त लीला होती है। तो ये जो गहवर वन है, ये गहवर वन की विशेषता ये है कि ये राधा रानी ने अपने हाथ से बनाया है। हाथ से बनाया का अर्थ क्या होता है? यहाँ के पेड़ पौधे वेलियाँ लता पुष्प फल फूल जो भी है सब कुछ राधा रानी ने अपने हाथ से बोए हैं, अपने हाथ से उसका सिंचन किया है, लालन पालन किया है। पेड़ खाली बोने से कुछ नहीं होता है, बहुत संभालना पड़ता है। ऐसा यहाँ का केली कदम हम मुंबई ले गए थे, रोज जल देते रहे, कुछ भी नहीं फर्क पड़ा, 6 महीने तक हिला भी नहीं वो। 6 महीने के बाद लगा कह रहे ये तो गया, लेकिन 6 महीने के बाद में ऐसा एक एक फुट रोज बढ़ने लगा, एक एक फुट, और अभी चौथी मंजिल के ऊपर चला गया है यहाँ का कदम। तो पेड़ को बढ़ाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा ही खाली डाल दिया तो अपना पेड़ बनता नहीं है। तो वो सारा सिंचन लालन पालन जो है सारे वन के पेड़ों का, सारे सौंदर्य का, जो भी यहाँ पर सौंदर्य है लता लता पता बेलियों का, वो सारा निर्माण राधा रानी ने स्वयं किया है, अपने हाथों से उनका सिंचन किया है, लालन पालन किया है। और लीला में राधा रानी लीला में क्या करती है, कृष्ण क्या करते हैं, बड़े वृक्षों का विवाह छोटे बेलियों से कर देते हैं। ये भी लीला, अद्भुत लीला केवल यहाँ होती है और कहीं वैकुंठ में नहीं होती है, ध्यान में रखना। ऐसी अद्भुत चटपट लीलाएं केवल ब्रज में होती है, वैकुंठ में भी कोई इसका प्रवेश नहीं है। जो आनंद यहाँ पर है वो वैकुंठ में भी अवेलेबल उपलब्ध नहीं है। तो ये सब समझना जरूरी है कि हम कहाँ बैठे हैं। राधा रानी का और बरसाना धाम में कोई अंतर नहीं है, राधा रानी स्वयं बरसाना है, बरसाना स्वयं राधा रानी है। तो राधा रानी का हृदय के अंदर आप बैठे हो, यहाँ पर निरंतर जो है वो दिव्य लीलाएं चलती रहती है। सब लोग यहाँ देखो, बाहर मत देखो। सो ये गहबर बन जो है ये इतना उत्कट है, थोड़ा समझ लीजिए कि इसकी ज्योग्राफिकल भौगोलिक व्यवस्था क्या है। यहाँ पर ऐसे नाग जैसे गलियां हैं, कोई भी गली सीधी नहीं है, ऐसे ऐसे ऐसे। और दूसरा चीज है, ये सबके लिए आपके लिए वेकअप कॉल था, जो सो रहे थे उनको जगाने के लिए था। सो तो मैंने बताया कि यहाँ की सारी व्यवस्था ऐसे कमनीय है, सर्प जैसी है, और वो जमीन की है ना, रास्ता के रूप में ऊपर जो है हर एक व्यवस्था जो है कमान के रूप में, वितान वितान मंडप स्थिति अशोक वल्लरी वितान मंडप स्थिति, सब कमान के रूप में है। और उस कमान पे क्या होता है, वेलियां बहती रहती हैं यहाँ से वहाँ, रंग बिरंगी सुगंधी पुष्प जो है वो बहते रहते हैं। पूरे कुंज में अति रंग बिरंगी व्यवस्था है और सब जगह पर ऐसे सुंदर रंग बिरंगी वेलियां जो है वो बह रही है। और ये जो कुंड है इसके किनारे पे राधा रानी और कृष्ण, एक लीला है उनकी, परस्पर श्रृंगार लीला कहते हैं उसको, परस्पर श्रृंगार लीला, अर्थ बहुत स्पष्ट है, एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। बाकी लीलाओं में गोपियाँ, कुछ गोपियाँ मिलकर जैसे वृंदा देवी तय करती है तो कुछ गोपियाँ मिलकर राधा रानी का श्रृंगार करती है, और जैसे वृंदा देवी तय करती है कुछ गोपियाँ मिलकर कृष्ण का श्रृंगार करती है। ये आम तरह की व्यवस्था होती है रासलीला में और कोई नौका विहार में और कोई लीला में, लेकिन यहाँ पर अधिकतर क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, फिर वो उनकी जो मर्जी है वह करते हैं। तो उसमें एक लीला होती है परस्पर श्रृंगार लीला। तो यहाँ पर गैबर कुंड के किनारे राधा और कृष्ण एक दूसरे का परस्पर श्रृंगार करते हैं, वो दूल्हा दुल्हन बन के, फिर कृष्ण जो है वो उनका हाथ पकड़कर उनको दाहिने हाथ से उनका दाहिना हाथ पकड़ते हैं और ऐसे लेके आ रहे हैं, और बाएं हाथ से लता बेली द्रुम को सवारा करेंगे, दूसरे हाथ से बेलियों को उठाते हैं, उसको कहना सवारना कहते हैं, लता बेलियों को सवारते यानी रास्ता बनाते हैं, तो जा नहीं सकते ना, तो उसको एक हाथ से रास्ता बनाते हैं, एक हाथ से उनको अंदर लेके जाते हैं। ऐसे करते 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 पूरे ब्रज गैबर बन के अंदर अंदर पुष्पों की एक शेज बनाई है, यानी बेड, पुष्पों की एक व्यवस्था है, वहाँ तक लेके जाते हैं, वो भी एकदम गहरे गहरे गहरे, वो गहवर कुंभन का भी हृदय है, अंदर गुप्त जगह है, और वहाँ पर सारी गोपियाँ कोई आती नहीं वहाँ पर, और वृंदा देवी और चित्रा सखी, खास करके यहाँ की जो देवी है चित्रा देवी, ये चित्रा देवी का गांव है, धर्म भानु और शारदा देवी की कन्या है वो, और बड़ी विचित्र और विशेष देवी गोपी है वो, फलों से फूलों से पक्षियों से पेड़ों से बातें करती है, उनको समझाते हैं कि आपको लीला में क्या करना है, कितना झुकना है, आपके फल की डाली कितने नीचे करनी है फूल की डाली कहाँ रखनी है, दंडवत किसको करना है, पेड़ दंडवत करते फिर खड़े हो जाते हैं, ऐसा अद्भुत कार्य होता है, पक्षियों को क्या बोलना है, कब बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, कौन से राग में बोलना है, कौन से पक्षी बोलेगा, ये सारा नियोजन जो है वृंदा देवी के माध्यम से चित्रा सखी सब बना देती है, और सखिया कोई नहीं है लेकिन सारे पंछी जितने भी है, सब जितने भी पेड़ हैं वो सब मिलकर लीला में सहभाग देते हैं, और उसके अंदर गहबरवन के अंदर राधा कृष्ण विराजते हैं, प्यारी जू आगे चल गहबरवन भीतर, जहाँ बोले कोयल री, हे राधे चलो मैं आपको गहबरवन के अंदर ले जा रहा हूँ, यहाँ पर कोयल बहुत मधुर मधुर मीठा मीठा बोल रही है, वहाँ पर आप चलो, ऐसा करके लेके जाते हैं, बहुत बहुत गीत हैं, ये स्वामी हरिदास नाम के संत हुए हैं जो ललिता देवी के अवतार हैं, वो ललिता देवी के अवतार जो हैं वो स्वामी हरिदास के रूप में आए थे, जिन्होंने वृंदावन में बांके बिहारी जी को प्रकट किया था निधि वन में, तो उन्होंने यहाँ की लीला गाई है, यानी रची है और लिखी है, प्यारी जू आगे चल गहवर वन भीतर, जहाँ बोले कोयल री, और बाकी फिर वर्णन करते हैं कैसे कैसे अलग अलग पंछी बोल रहे हैं, हे राधे सुनो आपका गौरव कर रहे हैं, आप यहाँ विराजो, हमको सुनकर ना गदगद होना चाहिए कि ये सांकरी कोर है ना, सांकरी कोर, ये सांकरी कोर से गहवर बन तक काफ़ी जगह है, हो सकता है 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से लंबाई में, लेकिन चौड़ाई में बहुत है, तो श्री कृष्ण यहाँ पर सेविका बनकर सखी बनकर सेवा करते हैं, और शाम को लीला होने वाली है तो दोपहर से ही यहाँ पर आकर अपने हाथों से सारा सांकरी कोर का विभाग और सारा गहवर बन फूलों से सजाते हैं अपने हाथ से, और ऐसा सजाते हैं पूरी फूलों की शेज यानी बेड बैठने की जगह, सारा जो डेकोरेशन है वो स्वयं अपने हाथ से करते हैं, और फिर संध्या के समय पर दोनों परस्पर श्रृंगार करते हैं, फिर उनको लेकर भी अंदर जाते हैं, तो अभी एक बार तो एक ही लीला नहीं होती ना, हर रोज लीला होती है, तो एक लीला में ऐसे हुआ श्री कृष्ण भगवान को श्याम सुंदर को लगा कि राधा रानी के चरण कमल मेरी छाती पर आने चाहिए, तो राधा रानी आने का समय हुआ, श्रृंगार करके आ रही है, तो श्री कृष्ण भगवान जो है ना कई फुट फूलों का जो स्तर है उसके नीचे लेट गए सांकरी कोर पे, अभी राधा रानी फूलों पे चल के आ रही है, इतने बड़े इतने लेयर इतने 4-4 फुट के फूल लगा के रखे हैं, उसके नीचे श्याम सुंदर जी लेटे हुए हैं, तो फूलों पे चल रहे तो आसानी से चल रहे हैं, अचानक पैर में कुछ लगता है उनको, जब उनका पैर उनके चरण कमल ठाकुर जी के छाती पर विराजमान होते हैं तब उनको समझता है कि कोई है, तो देखे फूल निकाल के देखते तो श्याम सुंदर जी विराजमान है, तो उनके आंखों से आंसू आते, क्यों ऐसे आप कर रहे हो, नहीं मुझे छाती पर वक्षस्थल पर आपके चरण कमल मुझे चाहिए थे इसलिए मैंने ऐसा किया, फिर उनको बड़े प्रेम से आलिंगन देते गले लगाती है, छाती को बार बार परोसती है, कोई दर्द तो नहीं हुआ, कोई कष्ट तो नहीं हुआ, ठाकुर जी बड़े प्रेम से भाव विभोर हो जाते हैं राधा रानी के चरण कमल अपने वक्षस्थल पर प्राप्त करने के बाद, ऐसा ही स्थान है यहाँ पर, ललिता विशाखा को कभी कभी प्रवेश नहीं है, वो केवल अपने व्यवस्था करके छोड़ देते हैं उनको, फिर वो नित्य विहार करते हैं अपना प्रेम का लीला करते हैं, तो यहीं पर एक समय में राधा रानी और कृष्ण भगवान ने परस्पर श्रृंगार किया, मैं आपको सच से बता रहा हूं, तो श्रृंगार जब पूर्ण हुआ दो ही लोग हैं कोई है नहीं, तो राधा रानी ने कहा अभी मेरे श्रृंगार का वर्णन करो, हम किसी चीज का वर्णन करते ना जैसे लाल टोपी है तो बोलेंगे लाल गुलाब जैसी है, किसी वस्तु से तुलना करते हैं, कोई भी इस रंग की वस्तु को देखते हैं और फिर वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, वो नाक का वर्णन करना है तो कहते हैं कि चंपा कली जैसा नाक है, स्वर्णमय होगा तो कहते हैं कि चंपा के जैसा स्वर्णमय है। ऐसे कोई वस्तु को ढूंढना पड़ता है, उपमा, उपमा अलंकार कहते हैं उसको। तो भी राधा रानी का सौंदर्य देखकर कृष्ण को यहां कहीं भी ऐसी वस्तु नजर नहीं आई जो तुलना के योग्य हो, ना चंपा कली लगी, ना कोई गुलाब लगा, ना कोई लगा, ना कुछ भी ऐसे लगा नहीं कि कोई वस्तु इनके सौंदर्य के बराबर की है ही नहीं कि मैं तुलना करूं और इनका वर्णन करूं। तो उन्होंने पूरे अपने स्तर पर सब जगह देख लिया, चारों ओर देख लिया, घेवर वन में देखो पत्र है, पुष्प है, बेलियां हैं, सब कुछ है यहाँ पर, बहुत सौंदर्यमय स्थान है, परम सौंदर्यमय स्थान है। लेकिन फिर भी राधा रानी के दिव्य श्रृंगार किए हुए मुख कमल के समान तुलना के लिए कोई भी वस्तु नहीं थी। तो फिर उसने सोचा कि चलो और कहीं देखते हैं, तो उन्होंने आकाश में देखा, तो आकाश में उनको चंद्रमा दिखाई पड़ा। चंद्रमा बहुत सुंदर है ना आकाश में, उनको लगा ये राधा रानी के तुलना के योग्य है। तो उन्होंने कहा कि आपका मुख कमल चंद्रमा के समान सुंदर है। अब यहाँ पर बहुत सारे विवाहित लोग हैं, बहुत सारे विवाहित माताएं हैं, अगर किसी पति ने अगर पत्नी को कहा कि हे मेरे प्रिय आपका मुख कमल चंद्रमा जैसा है तो पत्नी कितनी खुश हो जाएगी। लेकिन राधा रानी प्रसन्न नहीं हुई, राधा रानी नाराज हो गई, रूट गई, वो एकदम अचानक रूट गई। अभी आप समझ रहे हैं कि आप गौरव कर रहे हैं प्रसन्नता देने के लिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन प्रसन्न नहीं हुई, रूट गई वो। तो कृष्ण ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ चंद्रमा में, क्या ऐसी वस्तु है जो आपको नाराज हो रही बना रही है। तो एक नहीं कई कारण है जिससे आप चंद्रमा की मेरी तुलना नहीं कर सकते। तो फिर अभी कृष्ण को भी अभी पश्चाताप हो रहा है, कह रहे मैंने क्यों क्यों किया, लेकिन समझना जरूरी, आगे भी कभी करूं तो गड़बड़ हो जाएगा, जान लो क्या है। तो कहते कि चंद्रमा में दाग है, हमारे सौंदर्य में कोई दाग नहीं है, कोई भी डॉट नहीं है उसके अंदर, कोई दाग नहीं है। और आप दाग वाले चंद्रमा की तुलना मेरे मुख कमल से कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, चंद्रमा को ग्रहण लगता है और हमारा सौंदर्य कभी भी किसी का ग्रहण नहीं लगता उसको, हमारा सौंदर्य को कभी भी ग्रहण लगता नहीं। चंद्रमा जो है सदैव घटता बढ़ता है, अमावस्या से धीरे धीरे बढ़ता है, फिर पूर्णिमा तक पहुंचता है, फिर पूर्णिमा के बाद फिर घटना है उसको। हमारा सौंदर्य कभी घटता बढ़ता नहीं, केवल बढ़ता ही है। तो कैसे तुलना हो सकती है चंद्रमा के साथ, जो आधा समय क्यों नहीं वो घटते रहता है, हमारा कोई घटने का काम ही नहीं है, केवल वृद्धि वृद्धि ही होनी है सौंदर्य में। चंद्रमा जो है वो पर प्रकाशित ग्रह है, सूर्य से प्रकाश लेकर फिर अपना प्रकाश दिखाता है। सूर्य नहीं तो चंद्रमा भी कुछ नहीं है। हमारा सौंदर्य जो है वो स्वयं प्रकाशित है, हम अपने प्रकाश से अपने तेज से प्रकाशित हैं। भले ये भी ठीक है, इतने सारे कारण बताए, लेकिन एक कारण ऐसा है कि हम सहन ही नहीं कर सकते। हमारी जो प्रतिस्पर्धी गोपी है उसका नाम चंद्रावली है वो इधर भी प्रेम से दो गुट होते हैं और दो गुट में स्पर्धा भी होती है, दो गुट में स्पर्धा भी होती है हमेशा, ये इनके पास जाते नहीं, वो उनके पास जाते नहीं है, वो इनके पास पानी नहीं पीते, वो नहीं करते, उनको यहाँ प्रवेश नहीं, उनको वहाँ प्रवेश नहीं, वो जब चाहे तब वहाँ संग करते तो यहाँ पर गुस्सा आता है, तब यहाँ संग करते तो वहाँ गुस्सा आता है। ये सब कुछ जो है प्रेम को बढ़ाने के लिए ये दिव्य प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। तो मेरी जो प्रधान प्रतिस्पर्धी गोपी चंद्रावली है उसका आधा नाम चंद्र में है, मैं नहीं सहन कर सकती उसके नाम से मेरी तुलना की जाए। और ये कहकर जो पैर को जमीन पर जोर से पटक कर वो चली गई, बहुत लंबी लीला है लेकिन वो रूठ गई। फिर मत पहाड़ का नाम क्या है, मान मंदिर, मानगढ़। तो यहाँ पर राजा रानी रूठ कर बैठती है, जैसे राजाओं के पास होता था ना कोप भवन, वो अपना कोप व्यक्त करने के लिए अलग ड्रेस कोड पहन के वहाँ जाते थे। जैसे हमारी कई कई माता गई थी ना, सारे अलंकार उतर कर काले कपड़े पहनकर बालों को छोड़कर जमीन पर लेट गई थी। कोप भवन, कहाँ गई मेरी पत्नी, प्रिय पत्नी, बोले कोप भवन। अरे कोप भवन क्यों गई है, बेटे का कल मेरे बेटे का राज्याभिषेक है। तो वैसे ही ये मानगढ़ है, यहाँ पर रूठने की जगह है, रूठ गई तो यहाँ पर आके बैठती। और जितना ज्यादा रूठे उतना ऊपर ऊपर चले जाती है बहुत ज्यादा रूठ के टॉप में बैठ जाती है एकदम ऊपर शिखर पे। फिर कृष्ण ललिता को लेकर बहुत मनाने का प्रयास करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं मना सकते। कभी मान मंदिर जाएंगे तो पूरी लीला बताएंगे, लेकिन संक्षेप में फिर कृष्ण मोर बनते हैं और मोर कुटी जो इसके ऊपर है वहां पर नृत्य करते हैं। तो राधा रानी को पता नहीं है कि ये मोर कृष्ण है, लेकिन वो ललिता कहती है देखो देखो मोर आया, देखो अभी कृष्ण नहीं है, उसको भूल जाओ, मोर का नृत्य तो देखो इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। तो फिर मुड़के देखती है, फिर वो इतने सुंदर मोर को भी उत्साह आता है, अरे देख रहे देख रही, तो उत्साह से नाचते हैं। फिर अचानक वो खुद स्वयं वहां पर उतर के मोर के साथ जुड़ जाती है और मोर मोरनी बनकर नाच करने लगते हैं। बहुत समय के बाद में जब ऐसे गले मिलते हैं मोर मोरनी, तो मोरनी को पता चलता है कि मोर कौन है। फिर तब तक तो रूठने का काम खत्म हो गया ना, मान लीला समाप्त हो गई। ऐसे कई बार राधा रानी रूठती है कई कारण से, कभी कृष्ण लेट आते हैं रास लीला में, कभी चंद्रावली को मिलने जाते हैं तो रूठ जाती है, बहुत सारे कारण हैं। कभी कुछ कुछ कह देते हैं, कभी कुछ चुरा लेते हैं, यहाँ का गहना इधर का गहना सब चुरा लेते हैं, बहुत सारा कष्ट देते हैं राधा रानी को, तो रूठ जाती है, ऐसा है। तो वो है मान लीला। तो ठाकुर जी का नाम क्या है? मान बिहारी। और राधा रानी का नाम क्या है? मानिनी। मान करके बैठती है और उनको रिझाने में कृष्ण को बड़ा आनंद आता है। और मान क्यों करती है राधा रानी? हम लोग भी मान करते हैं, लेकिन वो अहंकार के वजह से करते हैं, स्वार्थ के वजह से, अहंकार के वजह से हम लोग मान करते हैं, रूठ जाते हैं, उसमें स्वार्थ होता है। राधा रानी का मान जो है वो प्रेम के 8 हिस्सों में से एक अंग है मान। उसमें रति, स्नेह, प्रेम, भाव, ऐसे अलग अलग अनुराग, राग, अनुराग, ऐसे 8 अंग है, उसमें से एक अंग है मान, जो उस 8 में से भी अति उत्कट है, समझने में बहुत कठिन है। केवल प्रेम की वृद्धि करने के लिए राधा रानी मान करती है और हर बार मान करने के बाद प्रेम की वृद्धि होती रहती है। यही मान लीला का महत्व है। और मान लीला बहुत उत्कट लीला है और बहुत सारे रसिकों ने इसका वर्णन किया है, सूरदास जी ने किया है और स्वामी हरिदास जी ने किया है। और ये जो कुंड है यहाँ पर राधा रानी अपने गिने चुने सखियों के साथ में स्नान करती है रोज, कहते 16 या 64 या 8 जब उसकी मर्जी हो, लेकिन गिने चुने सखियों को लेकर यहाँ पर स्नान करती है। ये बहुत दिव्य स्थान है, यहाँ पर देवता लोग आकर शांति प्राप्त करते हैं, इस जगह का दर्शन करके यहाँ पर आकर निवास करके सारे देवताओं कृतार्थ हो जाते हैं। तो श्लोक लिखा है देवता कृतार्थ हो जाते हैं यहाँ पर आने से। ऐसे नित्य लीला यहाँ पर चल रही है। और जब गोपियाँ यहाँ पर स्नान करती है तो मोर कुटी से ग्वाल बाल लड्डू फेंकते हैं उनके ऊपर, वो डिस्टर्ब करते हैं, है ना? जब बम्बई में कुछ होता है तो अंडे फेंकते हैं, वो क्या है, बेकार जगह है। लेकिन यहाँ प्रेम से जब ग्वाल बाल गोपियों को त्रस्त करना चाहते हैं तो ऊपर से लड्डू फेंकते हैं। यहीं पर गुरु महाराज ने एक लीला बताई थी, वो भी संक्षेप में बता रहा हूँ, समय समाप्त हो रहा है। दीपोत्सव देखो, दीपों की रोशनी बहुत सुंदर दिख रही है। यहीं पर एक बार मधुमंगल को गोपियों ने पकड़ा था, सब लोगों को पकड़ने का प्लान था, क्योंकि सब लोग ग्वाल बाल जो है कृष्ण और बलराम जी के नेतृत्व में उनके सरदार के रूप में सबको नेता बनते हैं वो, और सबके घर में जाकर माखन चुराते रहते हैं और बहुत तंग करते हैं उनको, बहुत तंग करते हैं। तो गोपियों ने प्लान बनाया, एक दिन ग्वालिन सब गुजरिया पकड़े शाम को, सब मिल पकड़े शाम को, सब मिल पकड़े शाम को, उस योजना बनाते हैं। और वो योजना में सब लोग फिसल जाते हैं, भाग जाते हैं, बेचारा मोटा मधुमंगल जो है वो फंस जाता है, क्योंकि सारे खिड़की से भागते हैं कूद कूद कर, और ये बेचारा नहीं भाग सकता खिड़की से, क्यों, उसका पेट खिड़की में अटकता है, तो उसको नीचे खींचते हैं, वो बहुत पीटते हैं, बहुत पीटते हैं। फिर वो पुकारता है कृष्णा बलराम बचाओ, फिर कृष्ण बलराम ड्यूटर्न लेके आते हैं, क्योंकि तो उसमें सभी सब में से एक ही है वो ब्राह्मण का बालक, ग्वाल बाल ब्राह्मण का बालक है वो। गोपियों को डांटते हैं, आप समझते हो अब ब्राह्मण के बालक को पीट रहे हो, वो आपका जनेऊ का धागा तोड़ के शाप देगा ना, तो जिनके साथ जिसका विवाह 7 औरतों से हुआ, ऐसे बुड्ढे से आपका विवाह हो जाएगा। ऐसा बहुत डरा देते हैं। किसी भी औरत को लगेगा नहीं ना कि भाई बुड्ढा हो, 7 औरतें उसके पहले से हो, उसका साथ मेरा विवाह हो जाए। तो गोपियाँ बेचारी भोली वाली है, इनका ऐसे चतुरतापूर्ण बातों से बहुत डर जाती है, बोले क्या करें। तब तक फिर ये जो पीट पीट कर पड़ा हुआ है वो खड़ा हो जाता है, बोले उसको पूछो क्या करना चाहिए। सब लोग लड्डू बनाओ, और कोई भी गोप का लड्डू जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इसने भी रवे का बनाया, अपने भी रवे का बनाया, ऐसे नहीं चलेगा। प्लानिंग करो, कोई भी लड्डू रिपीट नहीं होना चाहिए। विविध प्रकार के लड्डू होने चाहिए। कौन सा लड्डू है वो? मनोहर लड्डू, वो बहुत पसंद है उसको, मधुमंगल को। सब गोपियाँ जाती है शाप के भय से, सब जाती है घर में, प्लानिंग करती है और ढेर सारे लड्डू लेकर आती है, अलग अलग विविध प्रकार के, रंग बिरंगी। और ये जो गेवर कुंड है ना, इसके ऊपर एक सिंहासन है, वो सिंहासन तो रास का सिंहासन है, जहाँ पर राधा कृष्ण विराजते हैं, रास में उनको बिठाते हैं, वो बहुत सुंदर, लेकिन उस पर वहाँ बिठाते हैं उसको, और लड्डू का भोग लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं। ब्राह्मण तो है, पूजा करने योग्य है, पूजा करते हैं। फिर वो सब बढ़िया से रुबाब से माला वाला पहन के, चंदन लगा के लड्डू का भोग लेता है, और फिर कहते हैं, सब गोपियाँ कहते हैं आशीर्वाद दो, तो कहते हैं आपका विवाह अभी ऐसे बुड्ढे से नहीं होगा जिसकी 7 पहले से पत्नियां हैं, आपका विवाह आपके मन में जो है उसके साथ होगा। ऐसा आशीर्वाद देके फिर वो चले जाते हैं। वो भी लीला इस गैवर कुंड के किनारे हुई है। बहुत अद्भुत स्थान है, बहुत प्रेम का स्थान है। तो ऐसे इस अद्भुत स्थान में हम लोग अभी दीप उत्सव करने वाले हैं। तो दीप उत्सव के बारे में समझना थोड़ा ज़रूरी ये है कि ये दीप जो है, ये जो पंचतत्व का एक भाग है ना। पंचतत्व क्या होते हैं? पृथ्वी है, उसमें तेज है, उसमें सूर्य है, उसमें अग्नि है, उसमें 5 प्रकार के जल है, उसके अंदर फूल है। ये पंचोपचार या षोडशोपचार, इस प्रकार से हम किसी की पूजा करते हैं। लेकिन सब में जो है वो दीप प्रधान होता है। हम लोग आरती करते हैं ना, में धूप जलाते हैं पहले, फिर दीपक दिखाते हैं, फिर उसके बाद में वस्त्र देते हैं, उसके बाद जल देते हैं, फिर वस्त्र देते हैं, फिर फूल देते हैं, फिर चामर है, फिर पोरपंख है, बहुत सारी वस्तु होती है। इन सब में प्रधान अगर कोई वस्तु है तो वो दीप है। और सब लोग याद रखना, जब भी ठाकुर जी की पूजा होती है, धूप से आरंभ होती है, चामर से समाप्त होती है, किसी को कभी भी बैठना नहीं चाहिए। जब ठाकुर की आरती होती है तो आपको खड़े होना चाहिए। अगर ठाकुर जी की आरती हो रही है और आप बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप में नरक में जाएंगे, ये शास्त्र का विधान है। तो दीप से यशोदा मैया भी कृष्ण की रोज आरती उतारती थी, उसको कहते हैं औक्षण। औक्षण का अर्थ ही होता है कि बड़े प्रेम से मैया बेटे की आरती उतारती है, नजर न लगे उसको। तो हम भी दीपोत्सव कर रहे हैं, क्योंकि दीपोत्सव एक तेज का प्रतीक है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। और धाम में जो स्थान है गहवर कुंड गहवर बन, उसका हम पूजन कर रहे हैं। इस भाव से आपको जाना है, कोई मनोरंजन की बात नहीं है, वो ठाकुर जी की सेवा है, एक दिव्य प्रकार की अलौकिक सेवा है। और इसी प्रकार की दिव्य अलौकिक सेवाएं भगवान के धाम में निरंतर चलती रहती है। यहां पर हम जो भी कर रहे हैं वो सभी वही चीज हमको वहां जाकर करनी है भगवत धाम में। मनुष्य जन्म में आकर वो हम दोबारा जो भूल गए हैं वो सीख रहे हैं। और जो भी उत्सव हम यहाँ मनाते हैं वो सारे उत्सव गोलोक धाम में होते हैं, और ये करने का हमको अवसर मिला है। अभी आई कैंप में आए हैं, लेकिन हम चाहते धाम की भी सेवा हो, तो कुंड भी स्वच्छ हो गया, दीप दान करेंगे, दीप दान के दीप के दिव्य प्रकाश में भगवान को राधा रानी को पुकारेंगे। सबको मुझे वादा करना पड़ेगा कि आप सब लोग हृदय से पुकारेंगे, ये सोचकर कि ये आपकी जीवन का आखिरी अवसर है, लास्ट चांस टू कॉल। वैसे हर समय वैसा ही होता है, हम ही आप गैवर बन में बैठे इसलिए नहीं है, जीवन का हर क्षण आखिरी क्षण हो सकता है। Nobody can tell you that next moment you will live, अगले क्षण में आप जिंदा रहेंगे ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं है। हम कल भी चाहेंगे, वापस भी जाना है बम्बई, वहां पर भी काम करना है, हाँ 75th बर्थडे भी देखना है, 75वां बर्थडे अमृत महोत्सव भी करना है, ऐसा बहुत सोचते हैं, लेकिन बीच में ही विकेट गिर जाता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो है, वो हर क्षण को, साधु जो सही साधु है, भक्त है भगवान का, वो हर क्षण जो है वो आखिरी क्षण के रूप में ही जीता है। और जिसका आखिरी क्षण होता है वो कैसे जिएगा, कैसे पुकारेगा, कोई आसक्ति रखेगा क्या, अरे ये मेरा, ये मेरा, मेरा। आखिरी क्षण में ही सब लोग ऐसे एकदम परम विरक्त रहते हैं, जाना है तो अभी क्या है, पैसा सब ले लो, जाओ मुझे छोड़ दो। संत लोग इसलिए आनंद रहते हैं क्योंकि वो आखिरी क्षण के रूप में ही जीते हैं अपना जीवन, इसलिए उनके जीवन में दुख नहीं होता है। दुख कब होता है, जब उनको लगता है ये मेरा है, वो मेरा, अरे मेरो मेरो कहे, अरे छोड़ दे या नादानी को, भजन कर राधा रानी को। मेरो मेरो कहो, छोड़ दे ये नादानी को, ये नादानी को छोड़ दो, ये सत्य नहीं है, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब किस तुम्हारा कभी था नहीं, कभी नहीं होगा, कभी नहीं है। लेकिन जो समझ जाएगा वो बुद्धिमान है। सब कुछ, कितने भी राजा, कितने भी रंग, कितने भी महान महान लोग आए हैं, राज्य पर, पृथ्वी पर राज्य किया है, लेकिन खाली हाथ चले गए हैं। छोड़ दे सब राजधानी को, सब राजधानी को राजा भी छोड़ के गए, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। इसलिए साधु लोगों का जीवन यशस्वी जीवन होता है क्योंकि वो हर क्षण को आखिरी क्षण के रूप में जीते हैं। चलो हमारे पास इतनी अनुभूति नहीं भी होगी, लेकिन दीपोत्सव के उस समय सब लोग इसी भावना से पुकारो कि हम आखिरी बार पुकार रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, कुछ जोर आया अभी ऐसा लग रहा है। और जहाँ पर हम प्रसाद पाने जा रहे हैं, ऐसा दिव्य परिवार है, जो भी मैं 40 साल से उनको देख रहा हूँ। आज क्या तारीख है, 5 तारीख, कोई बात नहीं। तो 40 साल से मैं उनको देख रहा हूँ, निरंतर लोगों की सेवा करते हैं, वहाँ पर अनंत लोगों को प्रसाद की सेवा होती है, वहाँ से यात्राएँ उठती हैं, ऐसा निष्पाप निरपेक्ष भाव जो है कहीं हमने देखा नहीं है। कभी भी आओ, प्रसाद पाओ, बहुत प्रेम से खिलाएंगे। कल आएंगे, आ जाएंगे, दोबारा आपको संकोच नहीं देखेंगे, दोबारा क्यों आया। हजारों लोग प्रसाद पाते हैं रोज एक घर में, घर में कोई संस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है उनकी। तो वहीं पर आप अभी ब्रजवासियों के कृपा से आज का शाम का संध्या भोज आपका वहां पर किया है, तो ऋणी भाव से लीजिए, उसको सोचिए मत, करिए तो ठंडी और कड़क पूरी है, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसा मुझे क्यों दिया, वो नरम वाली दो, ऐसा मत करो। ये राधा रानी का महाप्रसाद है, ब्रजवासियों के हाथ से प्रेम से आपको दिया जा रहा है, ये सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी प्राप्ति है, उसको ऋणी भाव से, कृतज्ञ भाव से स्वीकार करो। अपने आप को धन्य मानो कि ये मैं पा रहा हूँ, ये पा सक रहा हूँ मैं, मेरे जीवन में ऐसा भाग्य है कि आज मैं बरसाने में बैठकर, हाँ बरसाने के हृदय में, गहबर बन में बैठकर ये भोजन कर रहा हूँ। उसके बाद आपको प्रसादी मिलेगी, भेंट वस्तु में। वो क्या प्रसादी है, उनके घर में सब लोग भागवत कथा गाले हैं, जितने बच्चे हैं सब भागवत कथा करते हैं, चाचा जी भी करते हैं, ताऊ जी भी करते हैं, सब ठाकुर जी की कथा करते हैं। अभी भी सब लोग कहीं कहीं कथा कर रहे हैं, उनका जो पोता है वो किसी जगह पर कथा कर रहा है, पोती जो है कहीं कथा कर रही है, और चाचा जी ताऊ जी कहीं कथा कर रहे हैं, ऐसे आते जाते रहते हैं। बिल्कुल उनका विश्व भर में भागवत कथा करते हैं, तो भागवत कथा में बहुत चढ़ावा आता है, उसमें वस्त्र भी आते हैं, कंगन भी आते हैं, काजल भी आता है, कुमकुम भी आता है, बहुत सारे अलंकार आते हैं, बहुत प्रकार के साड़ियाँ कुर्ते, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो सब आकर इकट्ठा करते हैं और साल में एक बार आप लोगों को देते हैं प्रसाद के रूप में। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जो मिलेगा उसको लेकर धन्यवाद करना है। जैसे आपको लाल रंग का कंगन मिला, बोले माता जी हरे रंग का दे दो, नहीं बोलना है, माता जी ये मत रखो कुमकुम दे दो, माता जी ये मत दो काजल दे दो, और आप बोलेंगे मत प्रभु जी ये साड़ी दो, ये मेरे वाइफ को भी दे दो, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आपको मिलेगा वो बिना चॉइस किए आप आशीर्वाद के रूप में, प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है। हमारा कल्चर आपको ये दिखाना है कि यहाँ पर चुनने नहीं आए हम, भिखारी चुनता है क्या कभी, बोले क्या माता जी भवती भिक्षान देही, तो वो रोटी देगी, नहीं माता जी भवती जिलेबी देही। ऐसे बोलते हैं हम लोग, भिखारी को कोई चॉइस नहीं होता है, जो भी सूखा सूखा ताजा कच्चा जो भी है पक्का काजा जो मिलेगा वो लेना है उसको, ये भिक्षा का भी नियम होता है। आजकल के भिखारी क्या करते हैं, लेते फेंक देते, अरे क्या है क्या भिक्षा हुई, एक रुपया दे रहे है चाहिए नहीं तुम ही रखो, ऐसे बोलते हैं। भिक्षा का भी नियम होता है, साधु भी भिक्षा करते हैं, पांच घर में जाते हैं, जो मिलेगा वो लेकर आते हैं, बस कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा कम पेट भर के नहीं पेट भर के आधा पेट पाव पेट जो भी है केवल ऐसे लेते हैं बस धन्यवाद की भावना से, ये राधा रानी की कृपा है, उनकी कृपा से मिल रहा है। तो आपके लिए जो अनुकूल है वो प्रसादी आपको मिलेगी, और आपकी जो योग्यता है उसके ज्यादा अधिक आप सोचना नहीं कि मुझे वो क्यों नहीं दिया, वो प्रभु जी को अच्छा कुर्ता दिया, ये माता जी को अच्छी साड़ी दी, मेरे को वो लाल चाहिए थी मुझे पीली दे दी, ये सब नहीं सोचना है। हम लोगों को अपनी संस्कृति को बनाए रखना है, और उच्च संस्कृति वाले व्यवहार में ज्यादा कृपा होती है, क्योंकि राधा रानी की भक्ति में भी एक संस्कृति होती है, कैसे रहना है कैसे करना है कैसे बोलना है क्या करना है किस जगह पर कैसे रहना है, लाइन से जाना है धक्का मुक्की नहीं करना है, इससे आपकी आपके आपका चरित्र और आपकी संस्कृति का प्रदर्शन हो रहा है कि आप कैसे व्यवहार कर रहे हो। इसलिए इत्मीनान से जाइए, आराम से प्रसादी लीजिए, प्रणाम कीजिए और प्रसाद भोजन भी कीजिए, बस में बैठिए चले जाइए, और ये सारे अनुभव को हृदय में ऐसे बसा के रखिए, जन्म जन्मांतर तक आपको ये याद रहे कि ऐसा अनुभव आपको मिलेगा, दीपदान का प्रसादी और भोजन प्रसादी का व्रतवासियों के घर पे। तो हमारे पास भी प्रसाद की व्यवस्था है, आपको एक अलग प्रकार का दिव्य ब्रजवासी अनुभव देने के लिए हम यहाँ पर लेके आए हैं, आपको पूरा सेटिंग पूरा यहाँ पर लगाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्रज का एक रस होता है वो सबको उसका परिचय होना चाहिए। हम तो ब्रज रस के योग्यता के लोग नहीं हैं, हमारी योग्यता नहीं है ब्रज रस को, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे वर्षा हो रही है तो हम वर्षा में भीगने के योग्य नहीं, फिर भी भीग तो रहे हैं, वर्षा तो आ रही है, तो ऐसे राधा रानी कृपा करती नहीं है, वो कृपा बरसाती है, और बरसाने में बरसाती है तो सब लोगों को उसका स्पर्श होता है, तो वैसे हम भी भीग रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हम ऋणी हैं बहुत उसके, चॉइस नहीं कर रहे हैं, बहुत ऋणी हैं उसमें। तो आप लोग उसी भाव से अभी यहाँ से बिल्कुल धीरे धीरे कुंड की ओर जाना है, और कुंड के ऊपर जहाँ पर दीपक लगाए उसके अलग जगह बैठना है, और हम जाके वहाँ पर गाएंगे, राधा रानी को पुकारेंगे कुछ समय के लिए, फिर वहाँ पहुँचेंगे। जय जय श्री राधे।